प्रॉब्लम्स को बाय, हैप्पीनेस को हाय में मैं इला आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आजकल पेरेंट्स अधिकतर ये शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते, एक जगह पर एकाग्र होकर बैठ नहीं पाते। यही नहीं, अगर कोई खेल या कोई टॉय दिया जाए तो लंबे समय तक एक ही टॉय के साथ नहीं खेल पाते। यह एक आम समस्या है। यह है कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम, मन को एकाग्र करने की समस्या। तो इसी विषय पर बात करते हैं हम सिस्टर तृप्ति से। ओम शांति सिस्टर तृप्ति।
ओम शांति
सिस्टर तृप्ति। कॉन्सेंट्रेशन आजकल एक आम समस्या हो गई है, तो इस विषय में हमें कुछ बताइए।
एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 999 बार वे फेल हुए और 999 बार फेल होने के बाद जब वो बाहर निकले तो प्रेस रिपोर्टर्स से उन्होंने क्या कहा होगा? मैं हताश हो गया हूं, मैं हार गया हूं, आई एम डिप्रेस्ड, अपसेट, आई नेवर डू दिस अगेन। नहीं, थॉमस अल्वा एडिसन ने रिपोर्टर से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात का आविष्कार किया है, 999 बार बल्ब को न बनाने की टेक्निक का आविष्कार किया है। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस जर्नी में, रोलर कोस्टर में, जब मेरी गाड़ी ढलान की ओर होती है तो हमें हताश नहीं होना, हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें क्या करना है? अगले चढ़ाव की तैयारी। इस रोलर कोस्टर में नीचे आती हुई गाड़ी क्या करती है? मोमेंटम जेनरेट करती है। वह जितनी नीचे गिरती है उसका मोमेंटम उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, और ये एनर्जी काम में आती है अगले चढ़ाव को सक्सेसफुली क्रॉस करने में। तो हमारे जीवन की जर्नी, हमारा ट्रैवल उतार और चढ़ाव से भरपूर होता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी फेलियर कभी सक्सेस। पर इन फेलियर से कभी हमें घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, दुखी नहीं होना। हमें क्या करना है? इन फेलियर्स को गले लगाना है। वी हैव टू एम्ब्रेस दीज फेलियर्स। क्यों? क्योंकि ये फेलियर मेरे अगले सफलता की चाबी है। वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। इस फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बनाकर मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। नाइन्थ स्टैंडर्ड का बच्चा अगर कहे मुझे एग्जाम नहीं चाहिए, मुझे एग्जाम से डर लगता है, तो वो टेंथ स्टैंडर्ड में कैसे पहुंचेगा? उसी प्रकार जीवन के इन एग्जाम्स को अगर हम पास नहीं करेंगे, अगर हम ये कहें कि मुझे जीवन रूपी एग्जाम में टेस्ट नहीं चाहिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में कैसे जाएंगे? हमारी तरक्की कैसे होगी? हमारा प्रमोशन कैसे होगा? तो अगर हम अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में ऊंचाइयों की बुलंदियों को पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? हमें फेलियर्स को चखना होगा, हमें जीवन रूपी एग्जाम्स को पास करना होगा। वी कैनॉट से कि मुझे एग्जाम नहीं चाहिए। और एग्जाम भी कैसे फेस करेंगे? रोते हुए, दुखी होते हुए? एग्जाम में अगर रो लिए, दुखी हो लिए, हताश हो गए, तो क्या हो जाएगा? हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा।
हम एग्जाम देने के पहले ही फेल हो चुके होंगे।
पहले ही फेल हो चुके होंगे, ठीक उसी तरह जिस प्रकार रोलर कोस्टर की गाड़ी अगर नीचे गिरते वक्त उसने एनर्जी नहीं पकड़ी, मोमेंटम नहीं पकड़ा और वह चढ़ाई के लिए सफिशिएंट ना हुआ, तो वो नेक्स्ट चढ़ाई में फिर नीचे आ जाएगी, उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी।
सही है।
तो हमें क्या करना है? हर फेलियर को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है, अवेयरनेस के साथ उस फेलियर का परीक्षण करना है कि मैंने कहां गलती की, व्हाट वर माय इंप्रूवमेंट एरियाज, एंड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, ताकि अब एग्जाम आए तो उसे मैं फ्लाइंग कलर से पास कर सकूं। तो जीवन रूपी इस एग्जाम में जरूरत है फोकस्ड अटेंशन की, कॉन्सेंट्रेशन की, अपने एम का निर्धारण करके उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की। जितना निश्चय के साथ हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, लक्ष्य के लक्षण उतने ही हम में नजर आते रहेंगे और हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो अब हमें किस बात की जरूरत है? फोकस्ड अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन पावर। एक रीसेंट सर्वे हुआ था जिसमें स्कूल गोइंग किड्स का सर्वे किया गया था और उसमें क्या पता चला कि एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ अ चाइल्ड, हाउ मच इज इट? क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक चाइल्ड कितने समय तक फोकस रह सकता है?
20-25 मिनट।
तो अभी ये जो रीसेंट सर्वे हुआ था, एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ अ चाइल्ड होता है लगभग 11 मिनट। माना 11 मिनट से ज्यादा एवरेज बच्चे एक सब्जेक्ट पर फोकस्ड नहीं रह पाते, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाते। और यही रिसर्च की गई थी 1960 में विद अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स। और उस समय के क्या रिजल्ट्स थे? उस समय के रिजल्ट्स यह बताते हैं कि एवरेज अटेंशन स्पैन ऑफ अ चाइल्ड इज 40-45 मिनट्स। और उसी के आधार पर स्कूल में क्लासेस टाइम, इनका टाइम डिसाइड हुआ। 40-45 मिनट्स के पीरियड होते हैं आज के स्कूल में। तो पीरियड तो आज भी 45-40 मिनट्स के होते हैं, पर बच्चों का अटेंशन स्पैन 11 मिनट तक रह गया है औसतन।
तो ये निरंतर घटता ही जा रहा है, पहले ज्यादा था अब और कम है।
सही, निरंतर यह घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है। अगर हम आज देखें, अपने आप को भी देखें, तो हम लैपटॉप पे सामने खड़े हैं, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, गूगल का विंडो ओपन्ड होता है, मेल बॉक्स का एक दूसरा विंडो ओपन्ड होता है, याहू मेल मेरी खुली हुई होती है, वहां चैट का एक बॉक्स खुला होता है और वही मेरा एक और काम भी चलता रहता है। तो एक ही साथ हम कितनी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। स्विचिंग टाइम हमारा 2 सेकंड्स है, एवरेज स्विचिंग टाइम, एक काम से दूसरे काम में स्विच होने का एवरेज टाइम 2 सेकंड है। तो हम ही देखें कि विज्ञान ने प्रगति तो की है, विच इज वेरी गुड, लेकिन हमें भी यह ध्यान रखना है कि अगर हम कोई कार्य करें तो फोकस्ड अटेंशन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ उस कार्य को संपन्न करें।
सही है सिस्टर तृप्ति, आज के इस मॉडर्न जमाने में सब कुछ इजीली अवेलेबल है, परिणाम स्वरूप डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो बच्चे ही क्या, बुजुर्ग ही सही, हम भी सही, हमारा अटेंशन स्पैन घटता जा रहा है।
तो हमारे मन में साधारणतः 20-30 थॉट्स पर मिनट जेनरेट होते हैं। हमारा ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह है, कंप्यूटर के सीपीयू की तरह है, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो जब इनपुट डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन पहुंचती है सीपीयू में, माना जब मन से थॉट्स पहुंचते हैं ब्रेन में, यहां मन इनपुट डिवाइस है और ब्रेन सीपीयू है, तो ब्रेन को प्रोसेसिंग करनी होती है और प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देता है अपने बॉडी ऑर्गन्स को, और वो इंस्ट्रक्शंस जब बॉडी ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं तो बॉडी ऑर्गन्स उस प्रकार से एक्ट करते हैं। तो जब 20-30 थॉट्स पर मिनट की रफ्तार से मन चल रहा है और वो थॉट्स ब्रेन तक पहुंच रहे हैं, ब्रेन उनका प्रोसेसिंग करके आउटपुट पहुंचाता है आउटपुट ऑर्गन्स को, आउटपुट डिवाइसेस को, माना हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इन तक आउटपुट पहुंचाता है और तब कर्म करते हैं। जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिले, एक ही मिनट में जब हमारा मन ज्यादा थॉट्स जेनरेट करे, तो क्या होगा, इस सीपीयू को, इस ब्रेन को उतने ही ज्यादा थॉट्स को प्रोसेस करना होगा और उतने ही ज्यादा इंस्ट्रक्शंस ये जेनरेट करता है हमारे बॉडी के लिए, तो हमारी बॉडी को भी उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। और जब अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो, एक ही मिनट में या फ्यू सेकेंड्स में जब हम इंफॉर्मेशन को स्विच करते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहते हैं, तब क्या होता है, कम टाइम में, इन सेकेंड्स और मिलीसेकेंड्स, टू मेनी थॉट्स आर क्रिएटेड, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं जो ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन बहुत अधिक प्रोसेसिंग करता है, नॉर्मल से ज्यादा प्रोसेसिंग करता है, और इंस्ट्रक्शंस बॉडी पार्ट्स को मिलते हैं और बॉडी पार्ट से नॉर्मल से ज्यादा काम करते हैं। कहते हैं कि अगर ये थॉट्स की रफ्तार 40 से ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, पागलपन, मेंटल डिजीजेस। तो आदमी, हम इंसान, हम क्या होता है, मानसिक रोगों के अधीन हो जाते हैं, मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि देर आर टू मेनी इनपुट्स फॉर माई सीपीयू टू हैंडल, बहुत से थॉट्स आते हैं, मेरे ब्रेन की कैपेसिटी, प्रोसेस करने की कैपेसिटी कम है, मैं इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को हैंडल नहीं कर पाता, और कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, और फिर तरह तरह की मानसिक बीमारियां, क्योंकि मेरा ब्रेन, मेरा सीपीयू इतने इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए तैयार नहीं है, इतने इंस्ट्रक्शंस के लिए वह बना नहीं है। तो इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट, जो काम ले उसे फोकस्ड अटेंशन दे, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और उसी काम के आधार पर हम थॉट्स क्रिएट करें. नंबर ऑफ थॉट्स मे बी मोर बट रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. तो क्या होगा, थॉट्स की क्वांटिटी भी एक्सेसिवली ज्यादा नहीं होगी, कंट्रोल्ड होगी, और उससे हमारे ब्रेन तक जो इनपुट पहुंचता है वह भी कंट्रोल्ड मैनर में होगा, नॉर्मल होगा. और यह मेरे मन के लिए अच्छा है, मेरे ब्रेन के लिए अच्छा है और मेरे बॉडी के लिए अच्छा है.
सिस्टर तृप्ति, हम ये जो बातें करते हैं मन और ब्रेन की, कि मन अलग है ब्रेन अलग है, मन एक सूक्ष्म शक्ति है, तो ये मन हमारे शरीर में कहाँ होता है?
मन सोल माना आत्मा का एक हिस्सा होता है. तो सोल या आत्मा यह एक सूक्ष्म शक्ति है, यह एक इनविजिबल पावर है जो हमारे बॉडी में मस्तिष्क के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में यहां रहती है. तो सोल इट्स लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट, इतनी छोटी पॉइंट ऑफ लाइट जिसे हम आंखों से देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते. और यह मन इस सोल का एक पार्ट है. तो यह सोल होता है यहां भ्रुकुटी के बीच में, ठीक पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे. और पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है? ठीक मस्तिष्क माना ब्रेन के नीचे. अगर हम यह देखें कि एक गाड़ी है, एक कार है, तो उसका ड्राइवर कहां बैठता है? उसका ड्राइवर वहां बैठता है जहां से सारे कंट्रोल्स उसके नजदीक हो, ताकि वह इतनी बड़ी गाड़ी को इजीली कंट्रोल कर सके. तो यह बॉडी क्या है? यह एक कार है, एक गाड़ी है. और इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति, इस बॉडी को चलाने वाली ऊर्जा माना आई द सोल, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर जहां सारे कंट्रोल्स मेरे पास में हो माना पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन मेरे साथ में हो, वहां मैं बैठती हूं और इस बॉडी को चलाती हूं. तो हमने अभी देखा कि मेरा सोल जिसमें मन है, यह मन थॉट्स जेनरेट करता है और ये थॉट्स इनपुट है किसके लिए? मेरे ब्रेन के लिए. माना इन कंट्रोलिंग ऑर्गन्स, कंट्रोलिंग पावर जो है यह ब्रेन है. दिस इज अ कंट्रोलिंग बॉक्स. तो इस कंट्रोलिंग बॉक्स को या सीपीयू को मैं आत्मा मेरा मन थॉट्स पहुंचाता है. और जब ब्रेन प्रोसेस करता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती है. और ये हॉर्मोन्स मेरे सारे बॉडी में पहुंचते हैं और फलस्वरूप मेरी बॉडी कार्य करती है. तो इस प्रकार से मन और ब्रेन रिलेटेड है. मन इज मेटाफिजिकल, ब्रेन इज फिजिकल. आइंस्टीन ने कहा है, वेयर फिजिक्स एंड्स स्टार्ट्स मेटाफिजिक्स. तो यहां फिजिक्स ब्रेन जहां खत्म होता है, वहां पर है मेरा मेटाफिजिकल पावर आई द सोल, मैं सूक्ष्म शक्ति, इनविजिबल पावर जिसे देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है. तो इस प्रकार मन कंट्रोलर है, मन ड्राइवर है और यह बॉडी क्या है? यह कार है. अगर मन में थॉट आता है मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो वह ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देता है और फिर ब्रेन पैर को इंस्ट्रक्शन देते हैं और यह बॉडी मुड़ जाती है राइट में.
इसका मतलब हमारा शरीर एक बॉडी है और मन ड्राइविंग सीट पे बैठा है.
सही, मन ड्राइवर है जो जिस तरह से चाहे उस तरह से इस बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है अपने उद्देश्य को, अपने ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। पर उसके लिए जरूरत है हमें फोकस्ड रहने की, कॉन्सेंट्रेटेड रहने की, अपने लक्ष्य का निर्धारण करने की और लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर होने की। डाइवर्शन इज नॉट गुड फॉर अस। हमें अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए। अगर हमारे थॉट्स फोकस्ड होंगे, अगर हमारा अटेंशन स्पैन ज़्यादा होगा, तो यह मदद करेगा मेरे ब्रेन को, मेरे बॉडी को सहयोग देने में, ताकि हम अपने एम की तरफ पहुंच सके। वह एम कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो। छोटा इन द सेंस, मुझे अब प्यास लग रही है तो ग्लास उठाकर पानी पीना है, या फिर बड़ा मना इतना ही बड़ा क्यों ना हो जैसे मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनना है। तो इम्पॉर्टेंट इज फोकस्ड। किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए, अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए इम्पॉर्टेंट ही फोकस। और फोकस रहने से हमारे थॉट्स कंट्रोल में होंगे और हम उस ऑब्जेक्टिव को आसानी से रीच कर सकते हैं।
तो आज हमने यह सीखा कि फोकस्ड रहने के लिए हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए और नंबर ऑफ थॉट्स कम होने चाहिए। एक्सेस इन्फॉर्मेशन हमारे एकाग्रता के लिए अच्छी नहीं होती। इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डीके तृप्ति जी का। सिस्टर तृप्ति, धन्यवाद। कल हम इसी जगह इसी समय पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।
ओम शांति।
मैंने संतों का बहुत सत्संग सुना था, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिली, परमात्मा को नहीं पाया। मुझे पता चढ़ा कि ब्रह्म कुमारियों का राजयोग सेंटर भी है, वहाँ पर 7 दिन का कोर्स भी करना है। मैं वहाँ पर जाने लगी और 7 दिन के बाद फिर मैं मुरली सुननी भी स्टार्ट शुरू किया। उसमें मुझे इतनी शांति मिली, इतना अच्छा लगा कि मैं रोज नई नई पॉइंट्स लिखने लगी और घर आकर वो मैं रिपीट करने लगी। फिर मुझे इतना शांति मिली और मैं मुझे पता चढ़ा कि प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। कर्मों की गुह्य गति को जान गई हूँ और परमात्मा को पा गई हूँ।
अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता, हर कलि हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अक्षय कोश सदा शिव है और हम मधुबिनी संतान हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम,
परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचान है।
सत्यम शिवम,
ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु। चालू कर गर्वित रहते परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता हर कली हर फूल से वो प्यार करता
शिव अनादि है शिव अनंत है जीवन मधुबन शिव वसंत है
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता
शिव वसंत है।